मेरे बहुत बहुत प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज सितंबर 2015 का आखिरी दिन है, यानी कि डेट है 30 सितंबर 2015 और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, लेट्स स्टार्ट। हम शुरुआत करते हैं और एक अच्छी खबर है कि आज की हम ये शुरुआत विनय अग्रवाल जो नागपुर कोरिया छत्तीसगढ़ के हैं, ये उनको अपनी बधाई देते हुए कर रहे हैं और बधाई इस बात के लिए कि विनय अग्रवाल वहां के एक कॉलेज में जियोलॉजी के लेक्चरर अपॉइंट हुए हैं। उन्होंने इस बात की सूचना एक अच्छी खबर ईमेल के जरिए दी है और महत्वपूर्ण बात यह है कि विनय अग्रवाल एकेडमी के फर्स्ट बैच के स्टूडेंट रहे हैं। तो विनय, इसके लिए हम सब की तरफ से, सभी प्रिय श्रोताओं की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और मुझे जानकर बेहद खुशी हुई कि अब आप में इतनी क्षमता आ गई है कि आप अपने शहर में ही, अपने कस्बे में ही रहते हुए बड़े आराम से सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर लेंगे। तो हम सबकी इसके लिए शुभकामनाएं हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में भी सफल हों। फ्रेंड्स, अब हम आते हैं अपने सेकेंड स्टेज पर जो लाइफ मैनेजमेंट का स्टेज है। कल मुझे एक दो मेल मिले जिसमें सरदार भगत सिंह जी के जन्म दिवस पर की बात की चर्चा की गई थी और बधाई दी गई थी, उनके प्रति श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी विदेश से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की थी। डेफिनेटली दोस्तों, सरदार भगत सिंह कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। हालांकि उम्र के लिहाज से वो बहुत कम समय तक जीवित रह सके, लेकिन उनकी जो ताकत थी वो बहुत ज्यादा थी। तो हम सब भी उन्हें देर से ही सही अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और श्रद्धांजलि के रूप में फिर मुझे लगा कि आज मैं उन्हीं की कुछ विशेषताओं पर थोड़ा सा प्रकाश डालूं ताकि आप सब सरदार भगत सिंह जैसे व्यक्तित्व से प्रेरित हो सकें। दोस्तों, हम लोग हनुमान चालीसा की बातें कर रहे थे और हनुमान चालीसा में भूत पिशाच निकट नहीं आवे की बात कर रहे हैं, विद्यावान गुड़ी अति चातुर की बात कर रहे हैं और इसके बाद फिर हम लोगों ने जकरबर्ग के माध्यम से भारत के मंदिर और भारत की शक्ति के माध्यम से थोड़ी सी क्वांटम फिजिक्स की भी बात की। आपको लग रहा होगा कि ये सब कहीं कहीं अलग अलग से हैं, बिखरे बिखरे से हैं, सर ये क्या कर रहे हैं। मित्रों, मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि ऊपरी तौर पर ये सब के सब अलग दिखाई दे रहे होंगे, बिखरे बिखरे से भी लग रहे होंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। यहां तक कि आज जो मैं सरदार भगत सिंह जी के व्यक्तित्व और मस्तिष्क के दो चार पहलुओं के बारे में आपसे चर्चा करूंगा, वो भी आपको बिखरे हुए तो लगेंगे लेकिन वस्तुतः बिखरे हुए हैं नहीं। सच पूछे तो जिंदगी, हमारा जो जीवन है मित्रों, में इसे बहुत ही विराट, बहुत ही विशाल महासागर की तरह मानता हूं। अगर संसार के सारे सागरों को, जितने भी महासागर हैं, मिला दिया जाए तो भी शायद वो जीवन की बराबरी नहीं कर सकेंगे। और मैं कोई लाखों साल से चलते चले जाने आने वाले जीवन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो एक इंसान के जीवन की बात कर रहा हूं, आपके जीवन की बात कर रहा हूं, अपने जीवन की बात कर रहा हूं और किसी के भी जीवन की बात कर रहा हूं। एक जीवन ही अपने आप में इतना विराट और विशाल होता है कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और सरदार भगत सिंह जैसे व्यक्तित्वों ने अपने जीवन के द्वारा, जो उन्होंने जीवन जिया उसके द्वारा जीवन की इसी विराटता को, जीवन की इसी विशालता को सिद्ध किया है। हनुमान जी जैसे पात्र ने भी वही किया है कि जीवन इतना विशाल हो सकता है कि एक वानर इतना श्रेष्ठ वानर बन सकता है कि वो भगवान जैसा पूजा जा सकता है। और जकरबर्ग ने जो एक बात कही, भारत आया और इसके बाद मेरा सब कुछ बदल गया, एक छोटी सी उम्र में एक व्यक्ति इस तरीके की सफलता पाकर के जीवन की विराटता को सिद्ध कर सकता है। तो सवाल ये उठता है दोस्तों कि ये जीवन की विराटता आती कहां से है, है क्या। सच में मुझे बहुत अफसोस होता है, मेरे पास कुछ दिन पहले एक मेल भी आया था जिसे पढ़ करके मेरी आंखें डबडबा आई थी। और वो एक स्टूडेंट ने जिक्र किया था कि जब वो दिल्ली गया तो एक कोचिंग सेंटर पर गया तो वहां पता लगा कि दो स्टूडेंट ऐसे थे जिनके प्री के पेपर थोड़े से खराब हुए और उन्होंने सोचा कि अब जिंदगी ही जीना बेकार है और उसे उन्होंने सिद्ध भी कर दिखाया। जिंदगी से मुंह मोड़ लिया। मित्रों, ये हमारे जीवन को बहुत ही छोटे नजरिए से देखने का की एक आदत है। जीवन में कहीं फुल स्टॉप नहीं होता है। भारत ने तो यहां तक कि पुनर्जन्म के माध्यम से भी उस फुल स्टॉप को भी नकार दिया है, जबकि मृत्यु के बाद हम कह सकते हैं कि जीवन खत्म हो जाता है। भारत ने तो उसको भी स्वीकार नहीं किया है। कितना निरंतर चलने वाला होता है ये जीवन, कल्पना करके देखिए। तो ये वस्तुतः जीवन क्या है? क्या जो हम सांस ले रहे हैं यही जीवन है, या हम कोई बहुत बड़ा पद पा लेंगे वही जीवन है, या फिर बहुत ज्यादा धन कमा लेंगे वही जीवन है, या कि इससे हट करके भी कुछ है, या कि इन सबका मिला जुला रूप जीवन है? मित्रों, आज हम सरदार भगत सिंह को याद कर रहे हैं। 1931 में उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। उनकी कोई प्राकृतिक मौत नहीं हुई थी, लेकिन आपको लगता है कि 2015 में भी हम उतनी ही भावुकता के साथ, उतनी ही श्रद्धा के साथ उन्हें याद कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि सरदार भगत सिंह नहीं रहे? इससे ज्यादा उनकी मौजूदगी का प्रमाण और क्या हो सकता है? यही तो अमरता है। अगर कोई हमारी स्मृतियों में जीवित रहता है तो वो मरता कभी नहीं है, वो अमर हो जाता। शरीर तो खत्म होगा ही होगा, राम हुए अब सशरीर नहीं है, जो हम पढ़ते हैं। मोहम्मद साहब हुए सशरीर नहीं है। मुश्किल से 60 साल तक की, लगभग 60-62 साल की उनको उम्र मिली थी। ईसा मसीह को तो और भी कम उम्र मिली थी, शायद 30-32 साल की कुल उम्र मिली। वो भी सशरीर थे यहां, लेकिन आज नहीं है। लेकिन क्या सच में ये सब नहीं है? गुरु नानक साहब नहीं है? हैं, हमारी स्मृतियों में है, हमारे दिलों और दिमाग में है। और हम दिलों, किसी के दिल और दिमाग में कैसे घुस सकते हैं, बस इसी का जो रहस्य है, अगर आप रहस्य कहें तो फार्मूला है, सिद्धांत है, विज्ञान है। इसको जानकर जब हम जीना शुरू कर देते हैं दोस्तों, तो जीवन की उस विराटता को, उस विशालता को हासिल कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सरदार भगत सिंह के 2-3 छोटे छोटे संस्मरण मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, और इससे पहले कि मैं अभी उसे रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए हैं, क्योंकि सरदार भगत सिंह मेरे बहुत ही अद्भुत प्रिय आदर्श रहे हैं। प्रिय क्या कहूं, मेरे बहुत ही पूज्य आदर्श रहे हैं। और आपको मालूम है कि जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते रहते हैं, गर्म खून होता है, नया खून होता है, एक नया जोश और उत्साह होता है। और उस समय जब आप ऐसे क्रांतिकारी के विचार पढ़िए तो डेफिनेटली एक अलग तरह का की एनर्जी शरीर में भर जाती है, और सरदार भगत सिंह ऐसा करने में सक्षम थे। मित्रों, मैं 2-3 छोटी छोटी घटनाएं आपको बताता हूं। दोस्तों, सुबह सुबह सरदार भगत सिंह जी को फांसी पर चढ़ाया जाना था। उसी दिन की 2 घटनाएं बताता हूं आपको। उनकी मां आई और रो रो करके निवेदन करने लगी कि बेटा तुम माफी मांग लो, माफी मांग लो, क्योंकि अंग्रेजों ने यही कहा था कि अगर सरदार भगत सिंह माफी मांग ले तो उन्हें छोड़ा जा सकता है, उन्हें छोड़ दिया जाएगा, फांसी पर नहीं लटकाया जाएगा। सरदार भगत सिंह ने माफी मांगने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि वो जीवित रह करके अपने उद्देश्य को उतना पूरा नहीं कर पाएंगे जितना कि वो फांसी के फंदे पर हंसते हंसते लटक कर पाएंगे, क्योंकि पूरे देश में फिर एक आक्रोश, अंग्रेजों के खिलाफ एक आक्रोश की भावना उमड़ जाएगी, और फिर एक भगत सिंह की तो मृत्यु हो जाएगी, लेकिन उसी एक भगत सिंह की मृत्यु से, उसके शव से हजारों लाखों भगत सिंह जीवित उठ खड़े होंगे। वो जानते थे इस बात को, और उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया। कल्पना करके देखिए कि मां रो रही है और बच्चा मां की अंतिम इस इच्छा को पूरा नहीं कर रहा है। दोस्तों, वो कौन सी ताकत रही होगी? कल्पना करके देखिए, शब्दों पर मत जाइए मेरे, थोड़ा सा महसूस करके देखिए, तब आप इसको समझ पाएंगे कि सच में कौन सी ताकत रही होगी। और उस समय भगत सिंह ने कहा था कि मां, आज मुझे पहली बार लग रहा है कि काश मैं आस्तिक होता। भगत सिंह ईश्वर को नहीं मानते थे ना, वो मार्क्सिस्ट अप्रोच के व्यक्ति थे, बहुत ही प्रगतिशील विचारों के थे, वो धर्म और इन सब को बड़े अलग तरीके से लेते थे। उन्होंने कहा था कि मां, मुझे लगता है कि काश मैं आस्तिक रहा होता, यानी कि धर्म को मानता या ईश्वर को मानता, कह लीजिए, धर्म तो नहीं कहना चाहिए, काश मैं ईश्वर को मानता, क्योंकि अगर मैं हिंदू धर्म में विश्वास करता या किसी भी धर्म में विश्वास करता, खासकर हिंदू धर्म में, तो हिंदू धर्म में कहा गया है कि पुनर्जन्म होता है, और अब जबकि मैं कुछ पलों के बाद अंतिम सांस ही लूंगा, मैं कम से कम यह सोचकर संतोष कर लेता कि मेरा पुनर्जन्म होगा और वो तुम्हारी ही कोख से होगा, लेकिन मुश्किल यह है कि मैं आस्तिक नहीं हूं। सोच करके देखिए मित्रों, कि कितनी गहरी पीड़ा थी उनके अंदर। मां से बिछुड़ भी रहे हैं लेकिन जन्म जन्म से न बिछुड़ने की कहीं ना कहीं एक छोटी सी ही सही लेकिन प्रबल इच्छा उनके अंदर मौजूद है। तो मित्रों, ये जो द्वंद झेला होगा भगत सिंह ने, जो इस संकट को बर्दाश्त किया होगा, कैसे किया होगा, और इसके बाद भी वो टूट नहीं रहे हैं। और दोस्तों, इससे भी अद्भुत एक बात कि सरदार भगत सिंह अपने कमरे में बंद हैं, सुबह सुबह फांसी चढ़ाया जाना है, फांसी चढ़ाने का बिल्कुल वक्त हो चुका है, और जेलर आता है और सरदार भगत सिंह के कमरे को खोलता है जिसमें वो बंद है, और वो देखते हैं कि सरदार भगत सिंह बड़े इत्मीनान से लेटे हुए और किताब पढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं, चलिए, उसका अंदर से थोड़ा सा हिला कि देखो ये आदमी इतनी निश्चिंतता के साथ और किताब पढ़ रहा है, जबकि कुछ ही क्षणों के बाद इसको फांसी पर लटका दिया जाएगा, ये पढ़ के करेगा क्या। जेलर तो सोच करके गया होगा कि सरदार भगत सिंह करवटे बदल रहे होंगे, परेशान होकर के इधर उधर घूम रहे होंगे, चेहरे पर मासूमियत छाई हुई होगी, यही सोच करके गया होगा। लेकिन वो देख रहा है कि सरदार भगत सिंह आराम से किताब पढ़ रहे हैं। और दोस्तों, इससे भी बड़ी बात सुनिए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, वो ये कि जब जेलर ने कहा कि उठो और चलो, तो सरदार भगत सिंह उठे और जहां से वो किताब पढ़ रहे थे वहां उन्होंने बुकमार्क लगाया, मतलब वहां तक वो पढ़ा, एक पन्नी सी लगा दी, और इसके बाद चल दिए, मानो कि अभी मैं फिर आऊंगा और फिर इस किताब को पढ़ूंगा। दोस्तों, आप कल्पना कर सकते हैं कि इसके लिए मस्तिष्क पर कितने जबरदस्त नियंत्रण की जरूरत होगी। कल्पना करके देखिए कि फांसी के फंदे पर झूलने के लिए जा रहे हैं लेकिन दिमाग पर इतना जबरदस्त नियंत्रण है कि मैं किताब पढ़ रहा हूं तो केवल किताब पढ़ रहा हूं, और भूल गए हैं कि मुझे फांसी के लिए ले जाया जा रहा है, मैं अभी आकर फिर से पढ़ूंगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि यह छोटी बात है? हम अपनी छोटी छोटी समस्याओं से घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, इससे पूछते हैं, उससे पूछते हैं, अपने उद्देश्यों को छोड़ देते हैं। लगता है कि नहीं, समस्या मेरी जो छोटी सी समस्या है, मेरा जो जीवन इतना विराट है, इतना विशाल है, उससे भी विशाल बन गया है। समस्या इतनी बड़ी बन गई है कि मेरे जीवन की विराटता उसके सामने बौनी पड़ गई है, छोटी पड़ गई है। दोस्तों, जीवन छोटा नहीं है, इसकी विराटता छोटी नहीं है, ये बहुत विशाल है। सवाल यह है कि उसको धारण करने वाला हमारा मस्तिष्क कैसा है, उसमें कितनी विराटता है, उसमें कितनी विशालता है, उसमें कितनी उदारता है, उसमें कितनी ताकत है। वो फौलाद का बना हुआ है या फिर मक्खन का बना हुआ है, सारा कुछ इस पर निर्भर करता है दोस्तों। और मैं जहां तक मानकर चलता हूं फ्रेंड्स, कि अभी आप सब जीवन के बहुत महत्वपूर्ण क्षणों से गुजर रहे हैं। ये क्षण ठीक जैसे कि एक फिल्म का नाम है, ना मिलेगा दोबारा, कभी भी आपको अपने पूरे इस जन्म में तो कम से कम इतना सुखद, इतना महत्वपूर्ण और इतना मूल्यवान क्षण दोस्तों नहीं मिलेगा। सौदा आपको करना है, अभी के क्षणों को बर्बाद कर दीजिए, जिंदगी बर्बाद सी हो जाएगी। वो मैं केवल सिविल सर्विस के बारे में नहीं कर रहा हूं, हर चीज के बारे में। अभी के क्षणों को पकड़ लीजिए, पूरी जिंदगी आपकी पकड़ में रहेगी। जिंदगी को आप जैसा चाहेंगे वैसा जी सकेंगे। दोस्तों, फिर से वही बात कि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, नहीं मिलेगी दोस्तों। और मैं समझता हूं कि सरदार भगत सिंह जैसे लोगों ने अपनी मानसिक मजबूती से दोस्तों, अपने जीने के तौर तरीके से ये सिद्ध किया है कि कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। और जब किया जाएगा तो फिर अनुपम खेर साहब के प्रोग्राम की तरह कि कुछ भी हो सकता है। राइट फ्रेंड्स, तो आज के लाइफ मैनेजमेंट वाले स्टेज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अब मैं आता हूं अपने द्वितीय चरण पर, जो ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज का चरण है। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि यदि आप सच में और ईमानदारी के साथ न्यूज को सुन रहे हैं और सच में और ईमानदारी के साथ अपने कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली उसमें सिविल सर्विस भी शामिल है, तो कल के न्यूज को सुनने के बाद आपको इस बात को समझने में जरा भी दिक्कत नहीं हुई होगी कि कल के न्यूज की सबसे महत्वपूर्ण न्यूज कौन सी थी और सिविल सर्विस की दृष्टि से। डेफिनेटली आप सबने सोचा और बिल्कुल सही सोचा है, कल की जो सबसे बड़ी खबर है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो रेपो दर में कटौती की है। फ्रेंड्स, ये जो रेपो दर में कटौती की है इसको आप न्यूज पर ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। देखिए, ध्यान से सुनने से, ध्यान से पढ़ने से, ध्यान से देखने से किसी भी चीज की गुणवत्ता हजारों गुना बढ़ जाती है। एक गुना, दो गुना, पांच गुना नहीं, हजारों गुना बढ़ जाती है। यह ध्यान का कमाल है। और लोग पूछते रहते हैं कि सर मेडिटेशन कैसे करें? कुछ नहीं, आप इस ऑडियो को ध्यान से सुन लीजिए, मेडिटेशन हो गया। ध्यान से किताब को पढ़ लीजिए, मेडिटेशन हो गया। ध्यान से फिल्म को देख लीजिए, मेडिटेशन हो गया। गप मार लीजिए ध्यान से, मेडिटेशन हो गया। उसकी गुणवत्ता कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, अगर आप इस न्यूज पर ध्यान देंगे जिसकी मैं बात कर रहा हूं, रिजर्व बैंक ने जो अपने रेपो दर में 0.5% की कटौती की है, उसके अगर आप न्यूज की लाइन सुनेंगे तो उसमें पहली जो लाइन है वो ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक दर में कटौती की। वहां बैंक दर का पहली बार यूज हुआ है, इसके बाद फिर वो रेपो दर की बात करते हैं। फ्रेंड्स, अब एक छोटा सा सवाल है कि अगर मैं कहूं कि बैंक दर में कटौती की है और आप इसके बारे में कुछ नहीं जान, नहीं पढ़ा है आपने, तो क्या आप अनुमान लगा सकेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ? भले ही आप सटीक तरीके से अनुमान न लगा सकें, लेकिन इतना तो सोच लेंगे कि बैंक दर में कटौती की है, इसका मतलब यही होगा यार कि कुछ ना कुछ जो ब्याज लिया जाता है उसमें कुछ कमी की होगी। ये पहला वाक्य। दूसरा, मैं कहता हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो दर में कटौती की है। अब आप घूम जाएंगे कि यह रेपो दर क्या होता है। आप लोगों में से बहुत से लोग चूंकि जान रहे होंगे इसलिए इस संकट को फिलहाल आप हो सकता है कि न पकड़ पाए, लेकिन आपको तुरंत दिमाग कहेगा कि यार ये क्या हो गया, ये रेपो दर क्या होता है, आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर कहा जाए बैंक दर में कटौती की है तो आप तुरंत समझ जाएंगे। लेकिन इसको समझेंगे कैसे? जब आप इस न्यूज को ध्यान से सुनेंगे। और यदि आप इस न्यूज को ध्यान से सुनेंगे तो आप देखेंगे कि इस रेपो दर में कटौती करने से देश की अर्थव्यवस्था पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, उसका अच्छा खासा खुलासा उस न्यूज में कर दिया गया है। यह न्यूज लगभग लगभग 5 मिनट, 4-4.5 मिनट की है। 13-14 मिनट के न्यूज में 4.5 मिनट सिर्फ इसी के ऊपर है और पूरा खुलासा हो गया है कि अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान से सुन लेते हैं दोस्तों, तो आपका एक चैप्टर, एक टॉपिक उसमें पूरा हो जाता है ध्यान से सुनने पर। अब आप देखिए कि उसमें कौन कौन सी बातें आई हैं। 0.5% कम किया, मतलब 0.5 कम किया है, मतलब पहले था 7.25 और उसको कर दिया 6.75। देख, अब इसको बहुत थोड़ी सी समझ लीजिए कि रेपो दर, बैंक दर वो है, वो दर होती है जैसे जो दूसरे बैंक हैं, जैसे हम चलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मान लेते हैं, सबसे पॉपुलर बैंक है, तो स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक से मान लीजिए 1,000 करोड़ रुपए लेती है, ऋण लेगी, ताकि वो उस ऋण को आगे पब्लिक को दे सके। तो अब बट नेचुरल है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 1,000 करोड़ रुपए के ऊपर कुछ ना कुछ ब्याज लेगा, इंटरेस्ट तो लेगा ना। तो वो जो इंटरेस्ट ले रहा था पहले वो था 7.25%, अब उस इंटरेस्ट को उसने घटा करके कर दिया 6.75%। 0.5 कम हो गया। बहुत अच्छे से इसको समझने की कोशिश कीजिए और बहुत सरल है, सुनने में जटिल लग सकता है, आपकी अरुचि होगी उसमें तो वो और ज्यादा जटिल लगने लगेगा, लेकिन है बहुत आसान है। लेन देन का मामला है, जैसे आप बाजार में जाकर के आलू और बटा खरीद रहे हैं, इससे ज्यादा और अधिक कुछ भी नहीं, एकदम सरल, एकदम सहज। अब रिजर्व बैंक ने कहा कि भैया तुम 7.25 रुपए के बजाय, जब मैं बहुत देशी भाषा में बात कर रहा हूं, 7.25 रुपए के बजाय तुम 7.25 रुपए ब्याज देना। अब बैंक को तो फायदा हो गया, 8 आने का फायदा हो गया। अब बैंक क्या करेंगे? कि अब चूंकि वो उनको 8 आना प्रति सैकड़ा कम ब्याज उधर देना पड़ रहा है, तो अब वो इसी कम ब्याज वो अपनी अपनी ब्याज दर भी घटा देंगे पब्लिक को। बैंक से कौन ऋण लेगा? मुझे मकान बनवाना है, मैं बैंक से 20 लाख रुपए लूंगा। मुझे गाड़ी खरीदनी है, मैं बैंक से लोन लूंगा। मुझे और भी कुछ कुछ लेना है, जो भी कंज्यूमर सामान होता है, मैं बैंक से ऋण लूंगा। मुझे इंडस्ट्री लगानी है तो मैं पता लगा 50 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए बैंक से ऋण ले रहा हूं। तो पहले मान लीजिए बैंक मुझे 11% ऋण देता था, 11% पर, है ना, ये जो डिफरेंस होगा, जैसे मान लीजिए कि 7.25 वहां दे रहा है वो रिजर्व बैंक को, और मुझे वो 11.25 में दे रहा है, तो 4% का फायदा हो रहा है उसको, और यही उसका बिजनेस है। वो 4% में फिर अपने सारे खर्चे और दुनिया भर की चीजें निकालता है, वही उसकी उसका प्रॉफिट होता है। अब चूंकि वहां उसको 8 आना कम देना पड़ रहा है, तो यहां वो कहेगा कि भैया तुम 11 के बजाय तुम मुझे 10.5 दे दो। तो मुझे लगेगा अरे यार ये तो फिर ईएमआई कम हो गई, महीने का जो मुझे भुगतान करना पड़ेगा वो थोड़ा सा कम हो गया, तो चलो ऋण लो और मकान भी ले लो और गाड़ी भी ले लो। तो इस तरीके से बाजार में एक गतिविधि शुरू हो जाएगी। बाजार में तो तभी गतिविधि होगी ना जब पैसा होगा। अगर पैसा ही नहीं होगा तो क्या होगा? आप सामान डंप लगा करते रहिए, प्रोडक्ट प्रोडक्शन करते रहिए, कौन खरीदेगा? खरीदने के लिए पैसा चाहिए। पैसा चाहने के लिए चाहे हमारी खुद की कमाई हो जो रोजगार से आती है, या फिर हमको ऋण मिले, लेकिन ऋण भी आप तभी लेंगे जब उसको चुकाने की क्षमता रखते हो। तो मेन जो होगा वो रोजगार होगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि देश की अर्थव्यवस्था को एक गति मिल जाएगी। हमारे विदेश मंत्री ने भी, हमारे जो वित्त मंत्री हैं सॉरी, उन्होंने यही कहा कि इससे निवेश में मदद मिलेगी। निवेश में कैसे मदद मिलेगी? मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि जब आप ऐसी चीजों को सुने और इस तरह के स्टेटमेंट अगर आपको आपके ध्यान में आते हैं कि निवेश में मदद मिलेगी, बैंक दर में कटौती की गई है लेकिन इससे मुद्रा स्फीति नहीं बढ़ेगी, ये हमारे वित्त मंत्री ने कहा, तो आपको तुरंत ये नोट करके और उस पर सोचना चाहिए कि भाई अगर बैंक दर में कमी की गई है तो मुद्रा स्फीति कैसे नहीं बढ़ेगी। अब सोच करके देखिए, बैंक दर में कटौती कर दी गई तो अब मैं ज्यादा से ज्यादा बैंकों से ऋण लूंगा। जब मैं ज्यादा से ज्यादा बैंकों से ऋण लूंगा तो स्वाभाविक है कि उस ऋण को लेकर घर में तो रखूंगा नहीं, वो पैसा बाजार में आएगा। तो जब बाजार में ज्यादा पैसा आएगा, मतलब बाजार में अब धन की ज्यादा आपूर्ति हो रही है, मतलब मुद्रा की ज्यादा आपूर्ति हो रही है, तो जिस चीज की पूर्ति ज्यादा होगी उसकी कीमत गिर जानी चाहिए। लेकिन वित्त मंत्री ने एश्योर किया है कि नहीं गिरेगी। और इसके बाद उन्होंने तुरंत कहा, क्योंकि हमारा वित्तीय घाटा नियंत्रण में है। अब फिर आपको फिर सोचना चाहिए कि यार ये वित्तीय घाटा क्या है, क्या होता है वित्तीय घाटा, और हमारे वित्त मंत्री जी ने कैसे कह दिया कि नियंत्रण में है, कितना है हमारा वित्तीय घाटा, कितना है, कैसे नियंत्रण में आया, मुद्रा स्फीति क्यों नहीं बढ़ेगी, बैंक ने क्यों इतना अचानक अपने दर में इतनी कमी कर दी। तो इन सब चीजों पर अगर सोच करके आप एक दिन पूरा भी लगा देंगे तो विश्वास कीजिए मित्रों, ये घाटे का सौदा नहीं है। क्योंकि एक बार अगर आपने खूंटे को मजबूती के साथ चट्टान में छेद करके अच्छे से गाड़ दिया तो जिंदगी भर के लिए गड़ा रहेगा, बजाय इसके कि जल्दी 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 में ढेर सारे खूंटे गाड़े लेकिन सब दलदल में। कुछ दिनों में खूंटे गिरेंगे, खूंटे धंसेंगे भी और किसी काम के नहीं रह जाएंगे। ठोस तैयारी कीजिए। और मित्रों, आज इसके माध्यम से मैंने आपको ठोस तैयारी करने का एक छोटा सा तरीका बताया है, करके देखिए, ढेर सारी तैयारी हो जाएगी। उसी न्यूज में था कि नगद आरक्षी अनुपात में कोई कमी नहीं की गई है, उसे 4% ही रखा गया है। तो यार ये कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, नगद आरक्षी अनुपात, मैं यहां आपको नहीं बताने जा रहा हूं, आप देखिए, कुछ तो मेहनत कीजिए, अलग से मेहनत कीजिए। मैं ये आपकी आदत डालने के लिए कह रहा हूं कि आपको पढ़ने की इसी तरह की आदत होनी चाहिए, क्योंकि जो पकड़ बनेगी वो इसी आदत से बनेगी, रट लेने से नहीं बनेगी, सुन लेने से भी नहीं बनेगी, समझने से बनेगी। और समझने का तरीका यही है। तो इन पर एक बार आपकी पकड़ बन गई दोस्तों, एक बार आप थोड़ा सा पूरी तरह से समय डिवोट करके इसको दे कर दीजिए, समय डिवोट कर दीजिए तैयारी को, मतलब खूंटों को चट्टानों पर गाड़ना शुरू कर दीजिए। चलिए चट्टान ना सही तो जमीन में, कम से कम मजबूत जमीन में गाड़ना शुरू कर दीजिए। फिर आप देखेंगे कि एक समय ऐसा आएगा कि आप जिस भी एग्जाम में बैठेंगे वो आपको फल देगा, क्योंकि पेड़ लग चुका है और उसकी जड़ें गहरे तक पहुंच चुकी है। राइट फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं दूसरी महत्वपूर्ण खबर पर जो हरित राजमार्ग नीति को लेकर के थी। हरित राजमार्ग नीति अभी घोषित की गई है। देखिए बहुत क्लियर कट वर्ड है, शब्दों से हमें चीजों को समझने में बहुत मदद मिलती है यदि आप थोड़ी देर के लिए उस पर विचार करें तो। राजमार्ग हमारे हाईवेज हैं और उनको हरित बनाना है, उनको हरा बनाना है। अब हरे रंग से तो राजमार्ग बनेंगे नहीं, हरित का मतलब ही आजकल ये हो गया है एनवायरमेंट, पेड़ पौधे लगाना, यानी कि राजमार्गों के दोनों ओर पेड़ पौधे लगाने की नीति, हरित राजमार्ग। न्यूज में आपने ये भी सुना कि इसमें सरकार, राज्य सरकार, कारपोरेट, प्राइवेट लोग, इन सब की मदद ली जाएगी। मतलब टू सम एक्सटेंड यू कैन से कि ये एक पीपीपीपीपी मॉडल है जिसमें आओ भैया आप भी मदद करो, आप भी मदद करो, आप भी मदद करो। और न्यूज में ये भी कहा गया था कि दो इंपॉर्टेंट बातें और कही गई थी कि इससे लगभग 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि अब आपके भोपाल से तो जाएंगे नहीं वहां मद्रास में हाईवे में पेड़ लगाने, वहां के लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्हीं से कहा जाएगा कि भैया आप पेड़ लगाइए, पेड़ लगाएंगे फिर उनके रख रखाव भी होंगे, ये तो नहीं कि पेड़ लग गए बात हो गई, पानी देना, रख रखाव करना, पशुओं से बचाना, तो इस तरह से 5 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कही गई है इस नीति में वो ये कहा गया है कि फिर सैटेलाइट वगैरह के जरिए उसकी निगरानी की जाएगी, बकायदे उसकी देख रेख होगी, ये नहीं कि एक बार लगा दिया और बात खत्म हो गई। तो दोस्तों ये खासकर एक एनवायरमेंट के दृष्टि से एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, और आपको ध्यान होगा अगर आपने इतिहास पढ़ चुके होंगे आप तैयारी के दौरान तो, कि जो सम्राट अशोक जो हुए थे उन्होंने अपनी नीति के अंतर्गत ये रखा था कि राजमार्ग के दोनों ओर पेड़ फलदार वृक्ष, वृक्ष नहीं फलदार वृक्ष लगाए जाएं। और ये मतलब इनके दो तीन चीजें थी, पेड़ों के राजमार्ग के दोनों ओर फलदार वृक्ष लगाना, ये नहीं कि केवल पेड़ लगा दिए और छाया ही छाया है, ताकि खाने को भी मिले, पशुओं को भी मिले, पक्षियों को भी मिले और आदमियों को भी मिले। फलदार और छायादार वृक्ष लगाए जाते थे, सराय बनाए जाते थे थोड़ी थोड़ी दूर पर, जिसको आज आप रेस्ट हाउस कह लीजिए आज की लैंग्वेज में, और इसके बाद फिर बावड़ियां खोई, कुएं खोदे जाते थे ताकि लोग सफर कर सकें। तो कह लीजिए कि उसी का एक मॉडर्न रूप है ये हरित राजमार्ग नीति। मित्रों जो तीसरी खबर थी वो थी हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा के बाद लौट आए हैं। आयरलैंड की बात हम लोगों ने की, हम लोगों ने उनके अमेरिका यात्रा की भी काफी बातें की हैं। वहां यूएन के जनरल असेंबली को हमारे प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया, साथ ही वो सिलिकॉन वैली भी गए, उसके बारे में भी हम बातचीत कर चुके हैं। तो दोस्तों न्यूज में ही आपने देखा कि सब इंपॉर्टेंट चीजें कैसे निकालेंगे आप, है ना। जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए किसी घटना पर आपको 10 पॉइंट मिल रहे हैं, अब उसमें से आपको केवल 5 पॉइंट लेने हैं क्योंकि शब्द कम है और उनको थोड़ा सा डिस्क्राइब भी करना है, तो केवल 5 को लीजिए, बाकी का नाम केवल उल्लेख करके छोड़ दीजिए। तो ये 5 कौन कौन से होंगे, जैसे हमारे प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर गए, बहुत सी चीजें हुई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या हुई, इसका इसकी देन क्या रही, इसका फायदा क्या रहा, इसके हाईलाइट्स क्या रहे। तो देखिए न्यूज में ही बहुत क्लियर कट 3 पॉइंट्स बताए गए थे, ये 3 पॉइंट्स आपको अपने दिमाग में रजिस्टर्ड कर लेने चाहिए। पहला तो ये है कि यूएनओ में सुधार हो, जो पूरा का पूरा संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ढांचा है उसमें सुधार हो, और सुरक्षा परिषद को खासकर उसमें भारत की दावेदारी उन्होंने पेश की। भारत बहुत समय से इस दावेदारी को पेश करता आ रहा है और इसके बारे में मैं पहले बात भी कर चुका हूं। और इस दावेदारी को लेकर के दोस्तों आज अखबारों में राष्ट्रीय सहारा, कल के राष्ट्रीय सहारा में एक लेख भी छपा है, हिंदी में चुकी है और मैंने अंडरलाइन कर दिया है, तो वो लेख भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, आप पढ़ लेंगे। दूसरा था जलवायु परिवर्तन। आपको मालूम है फ्रेंड्स, हम लोग बात कर चुके हैं कि दिसंबर में, नवंबर लास्ट लेकर के दिसंबर में पेरिस में जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन होने जा रहा है और यह बहुत इंपॉर्टेंट सम्मेलन है। इससे पहले मैंने आपसे यह भी बात की थी कि भारत उसमें खासकर जलवायु पर्यावरण न्याय की बात कहेगा, और पर्यावरण न्याय के अंतर्गत जो भारत की जो सबसे बड़ी मांग है वो ये है कि सबसे ज्यादा जो एनवायरनमेंट को जो पॉल्यूट करने वाले कंट्रीज हैं वो हैं जो इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गए हैं, जहां बहुत ज्यादा औद्योगिकीकरण हो गया है, जीवन स्तर पर भी वो सबसे ज्यादा प्रदूषित कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, और औद्योगिक स्तर पर तो कर ही रहे हैं। तो उनको चाहिए कि वे जो विकासशील देश हैं, जो गरीब देश हैं, उनको टेक्नोलॉजी की मदद दें और पैसों की भी मदद दें, ताकि वो हरित कामों के लिए उस धन का इस्तेमाल कर सके, क्योंकि ये जो गरीब देश है, ये जैसे भारत, भारत का जो प्रति व्यक्ति उत्सर्जन है गैसों का वो बहुत कम है, 1.6% या ऑफ द वर्ल्ड, जबकि चाइना वगैरह का बहुत ज्यादा, 16% 17% इस तरह से है। चाइना और अमेरिका ने अभी कुछ महीने पहले, हम लोगों ने आरडीओ में डिस्कस किया था कि इस पर एक समझौता भी किया है कि ये 2020-22 तक अपने उत्सर्जन को काफी कम करेंगे, जबकि इससे पहले कोपनहेगन वगैरह में इन लोगों ने इस चीज को स्वीकार नहीं किया था, क्योटो प्रोटोकॉल में भी स्वीकार नहीं किया था। तो मित्रों, इस तरह से दूसरी बात उन्होंने जलवायु परिवर्तन की रखी, मतलब विश्व स्तर पर, और इसके बाद तीसरी बात थी आतंकवाद को लेकर के, जो पूरा का पूरा विश्व जो आतंकवाद से परेशान है इसको लेकर के, तो ये तीन उनकी यात्राओं के हाइलाइट्स रहे। तो मित्रों, ये तीन महत्वपूर्ण खबरें थी। अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग पर। दोस्तों, मैं एक चीज आप लोगों को स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैंने कल या परसों एक बात कही थी कि मैं अब प्रेस क्लिपिंग्स कम करने जा रहा हूं। इस पर मुझे दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं मिली हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किए कि सर आप प्रेस क्लिपिंग्स को बिल्कुल कम ना करें, हम जिसको भी ठीक समझेंगे उसे पढ़ेंगे या हमारे कुछ काम की वो चीजें हो सकती हैं, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने कहा कि सर आपका ये बहुत सही डिसीजन है, जो जरूरी हो केवल उन्हें ही आप क्लिपिंग्स में डालें। मित्रों, मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा, मेरा जो बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण है वो ये है, आप लोगों को सिविल सर्विस की तैयारी के लिए परफेक्ट करना, बस। कभी भी मत सोचिए कि अगर मैं किसी चीज में कोई कटौती कर रहा हूं तो मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे कम मेहनत करनी पड़े या मेरे पास वक्त कम है, नॉट एट ऑल, किसी भी कीमत पर नहीं। जिस दिन मुझे ये लगेगा कि मेरे पास वक्त कम है, विश्वास मानिए कि मैं कटौती करने की बजाय उसे बंद करना ज्यादा बेहतर समझूंगा, क्योंकि आप मुझ पर विश्वास कर रहे हैं और मैं उस विश्वास को नहीं चाहता कि वो आधा अधूरा विश्वास हो या जरा सा भी उसमें छद्म हो, कहीं भी जरा सा भी खेल हो, नॉट एट ऑल। इसीलिए अगर मैं क्लिपिंग्स कम कर रहा हूं तो एक थ्योरी के तहत कर रहा हूं, एक सिद्धांत के तहत कर रहा हूं, और वो ये कि जो मैं क्लिपिंग्स प्रोवाइड करूं वो बेस्ट क्लिपिंग्स हो, ताकि आप उन थोड़े से क्लिपिंग्स को ज्यादा ध्यान से पढ़ सकें। जैसे उदाहरण के लिए, कल रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कटौती की, आज ज्यादातर अखबारों ने इस पर एडिटोरियल कमेंट्स लिखे हैं, हिंदी के भी अखबारों ने और इंग्लिश के भी अखबारों ने। मैंने हिंदी के अखबारों से केवल दैनिक भास्कर का क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, क्योंकि ये बेस्ट है, जितने भी क्लिपिंग्स इस पर अवेलेबल है उनमें ये बेस्ट है। ठीक इसी तरह से इंग्लिश का जो है वो इकोनॉमिक टाइम्स ने भी लिखा है, बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी लिखा है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी लिखा है। तो इसमें जो मुझे बेस्ट लगा सिविल सर्विस के लिहाज से, मैं एकेडमिक और नॉलेज और उस लिहाज से नहीं कह रहा हूं, सिविल सर्विस के लिहाज से मुझे जो लगा कि मेरे स्टूडेंट्स के लिए ये ज्यादा अच्छा होगा, उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया की क्लिपिंग्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। बस मेरा चयन का आधार अब ये है। एक ही टॉपिक पर बहुत से आर्टिकल्स आते हैं, अगर मुझे लगता है कि ये इस टॉपिक पर तो मैं कल इससे बेहतर आर्टिकल्स प्रोवाइड कर चुका हूं तो आज मैं उसे नहीं डालूंगा। पहले मैं डाल देता था कि चलो आज कुछ नए स्टूडेंट आए होंगे उनको पढ़ने को मिल जाएगा, लेकिन मुझे मालूम है कि इससे नए स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ज्यादा तो नहीं, क्योंकि वो अभी नए हैं, पढ़ने की टेक्निक उन्हें बहुत अच्छे से मालूम नहीं, जब वो एक दो महीने में हो जाएंगे तो वो खुद इतने मैच्योर हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो थोड़े से पहले के स्टूडेंट हैं वो कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाते हैं या एक प्रेशराइज महसूस करते हैं कि अरे बाप रे इतना सारा पढ़ना है, ज्यादा पढ़ते हैं तो भ्रमित भी होते हैं, क्योंकि आप लोगों के मेल से मुझे ऐसा लगा और वो ऐसा हो रहा है तो आपके साथ गलत नहीं हो रहा है। इसीलिए मित्रों, मैंने ये निर्णय लिया है, कुछ दिनों तक आप इसके साथ चलते रहिए, अगर फिर भी कुछ ऐसा होगा तो आई एम रेडी टू रिव्यू, आई एम वेरी फ्लेक्सिबल, मैं बिल्कुल परिवर्तन करने को तैयार हूं, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है या जो मेरा हित है वो सिर्फ आपके हित में है। मैं जो भी काम करूंगा केवल इस लिहाज से करूंगा, ये सोचकर करूंगा इससे आपको फायदा होगा। इसलिए दोस्तों, आप लोग बिल्कुल भी इस बात को लेकर चिंतित न हो। फ्रेंड्स, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स नॉलेज सेंटर पर अवेलेबल है, तो प्लीज आप उसे देख लें, उस पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। अब मैं आता हूं ईमेल पर। सबसे पहले एक मेल है राहुल तिवारी का इलाहाबाद से। राहुल, आपने पूछा है कि आपका बीच में स्टडी में गैप हो गया था और आपके परसेंटेज भी थोड़े से कम हैं और इसको लेकर के आपको लोग कहते हैं कि सिविल सर्विस में ये दोनों चीजें मायने रखती हैं। मैं कई बार इस ऑडियो में बता चुका हूं कि ये चीज कोई मायने नहीं रखती, 0% भी मायने नहीं रखती। मायने सिर्फ वो रखती है कि आप मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, दैट्स ऑल। अपने दिमाग में किसी भी तरह की कोई आशंका ना मत लाए, और अगर दूसरे कोई कुछ कहते भी हैं तो एक कान से सुनिए, और ईश्वर ने दूसरा कान इसीलिए दिया हुआ है कि फालतू की चीजों को निकाल दीजिए। और दोस्तों, अब मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेल लिखे, और आप सबके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं। और इनमें से कुछ के नाम हैं: अवतार सिंह ढिल्लन संगरूर से, मनीष कुमार यादव गाजीपुर उत्तर प्रदेश से, अखंड प्रताप सिंह आगरा से, रविंद्र सिंह दिल्ली से, और हसीब अहमद दोहा कतर से। तो मित्रों, इसी के साथ ही अब मैं इसे समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।